समय सार अनुशीलन पेज नंबर 204। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, इसलिए ज्ञानी ज्ञान भावों का करता है और अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है। ज्ञानी अज्ञानी अज्ञान भावों का स्वामी बनता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है, और ज्ञानी उनको उनके जीवन में होते हुए भी उनका कर्ता नहीं बनता है, इसलिए उन्हें अकर्ता कहा जाता है। इसे इस भाषा में भी कह सकते हैं कि ज्ञानी करते हुए भी अकर्ता है, तो वो जरा न्यास लगता है। करते हुए भी अकर्ता कैसे कह रहे हैं आप? एक तरफ करते हुए मान रहे हो और फिर अकर्ता भी कह रहे हो, एक ही काम का वही करता वही अकर्ता, ये कैसे संभव है? कम से कम एक नए से तो संभव नहीं है। इसलिए भाषा उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है कि ज्ञानी के भी क्रोधादिक भाव होते हैं। जब वो करता नहीं है तो करता है क्यों बोल रहे हैं? उसके जीवन में पाए जाते हैं जो रागादिक पाए जाते हैं, वो उन रागादिक का भी करता नहीं है, और जो नहीं है उनका कर्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। ये बात कल बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा की थी कि पांडे राजमल जी ने सबसे पहले जितनी खोलकर सामने रखी उतनी शायद पहले नहीं खुली। नहीं खुली का मतलब कहा तो है ही, या सभी प्रकार का राग पुण्य पाप सब कहा तो बात तो आ ही जाती है, लेकिन देखो जो भाषा पांडे राजमल जी की भाषा अपन पढ़ रहे हैं, ये जो है 204 पेज पर दूसरा पैरा, मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। इस कारण सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप हैं, अथवा वृद्ध तपश्चरण रूप हैं, अथवा दान पूजा दया शील रूप हैं, अथवा भोगाभिलास रूप हैं, अथवा क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है, क्योंकि बंध का कारण है, संबंध निद्रा का कारण नहीं है। ये पैरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात प्रकरण में चल रही है वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक बात पर और ध्यान आकर्षित करता हूं मैं सभी मोक्षुओं का। देखा ना, मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है। जो हमारे अध्यात्मियों में ऐसी भाषा बन गई है ना कि द्रव्य तो परिणमता ही नहीं है, परिणमति तो पर्याय है, लेकिन यहाँ ये भाषा है द्रव्य परिणमा है। इस मुद्दे को भी बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अभी आप द्रव्य परिणमा है ये कह दोगे तो एकदम 10-5 लोग दूर फर्ज में खड़े हो जाएंगे। क्या बात करते हो, द्रव्य तो परिणमति नहीं, परिणमति तो पर्याय। अरे भाई, पर्याय तो परिणमन का नाम है। पर्याय क्या परिणमति है? पर्याय और परिणमन तो एकाधवाची है। तो द्रव्य पर्याय रूप परिणमा है, कह सकते पर्याय पर्याय रूप परिणाम है, क्या मतलब है? द्रव्य द्रव्य रूप परिणमा है का क्या मतलब है? परिणमन और पर्याय का तो एक ही अर्थ है, लेकिन वो भेद विज्ञान कराने के लिए कि परिणमन तो पर्याय है, ऐसी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, और उसे धीरे धीरे द्रव्य परिणमता है हम ये बात ही भूल गए। खासकर निमित्त उपादान की परिभाषाओं में अपनी क्लास में चलती है, निमित्त उपादान का बहुत चलता है, तो उसमें खासकर जो उपादान वाला है ना, उपादान क्षणिक उपादान नंबर टू, नंबर एक, जिसमें क्या बोलते हैं ना, पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद। अब उसका पूरा क्या, पूरा शब्द क्या है वास्तव में, ये तो हम संक्षिप्तीकरण की आदत है इसलिए ऐसा बोलते हैं कि पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य का व्यय और उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद, ऐसा लिखा अपन ने। और ये सब शास्त्रों में है, लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे, यदि उस वक्त ये बात कह देते हम एक मिनट में गैर मुमुक्षु घोषित हो जाते। द्रव्य का व्यय, द्रव्य का तो व्यय होता ही नहीं है, द्रव्य का उत्पाद, द्रव्य का तो उत्पाद होता ही नहीं है। ये रच किया था ना बहुत उस वक्त के मुमुक्षुओं ने, अब गहराई से स्वाध्याय तो किया नहीं था, लेकिन ये सब शास्त्र के शब्द हैं, मतलब निकाल निकाल के बताए उस वक्त कि देखो आश्री में फलानी जगह ऐसा है। पर्याय का व्यय क्या, पर्याय तो व्यय का नाम है, पर्याय तो उत्पाद का नाम है, तो परिणमा तो द्रव्य ही है, क्योंकि द्रव्य में एक परिणाम शक्ति है, अगर द्रव्य परिणमता ही नहीं है, द्रव्य परिणमता ही नहीं है। अब ये शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, ये परिणाम शक्ति, ये द्रव्य की है कि पर्याय की, यही तो कह रहे हैं कि हर एक द्रव्य ये आपको अपना परिणमन करने के लिए किसी अन्य द्रव्य के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। ये कह रहे द्रव्य के परिणमन की बात है ना, क्योंकि उसमें परिणाम नाम की शक्ति है, और वो परिणाम नाम की शक्ति निर्विघ्न है, निरंतराय है ना, इसलिए वो परिणमता है। ये सब भाषा आप इतने दिनों से सुन रहे पढ़ रहे, विकल्प नहीं आता है, इसे ऐसा पढ़ते जाते हैं और उधर वैसा पढ़ते हैं, और वो दिमाग में जमा है कि द्रव तो परिणमता ही नहीं है और पर्याय परिणमता है। फिर ये कहते हैं द्रव्य और पर्याय को भिन्न बताने के लिए हम द्रव्य को अपरिणामी कहते हैं, लेकिन उस जिनवाणी में एक अपेक्षा से द्रव्य को परिणामी भी कहा है, कथनचित और कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। तो ये बात करते हैं तो परिणामी कहते ही वो लोगों को बहुत घबराए, कैसा परिणाम में पर्याय आ जाए, परिणाम में पर्याय आ जाती है, तो पर्याय है दबाती है ना, कि देवदशी घुस जाती है क्या, तो हमको तो पर्याय से रहे द्रव्य देखना है, तो देखो ना तुम, कौन मना करते हैं क्या। लेकिन वो पर्याय से रहे द्रव्य देखने के लिए पर्याय को द्रव्य से जुदा करने की जरूरत नहीं है, जुदा जानने की जरूरत है, उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो लड़की को उसके घर वाले सजा के संभाल के एकदम अप टू डेट ट्रेंड करके कपड़े लत्ते पहना के बढ़िया से बढ़िया भेजते क्या नहीं भेजते हैं, तो हमें तो लड़की देखना है, हमें तो लड़की देखना है, तो देखो ना लड़की, लड़की दिखा रहे हैं ना आपको, हमें कपड़े नहीं देखना, हमें गहने नहीं देखना, तो हम कब कहते हैं तुम कपड़े देखो, कब गहने देखो, हम तो कह रहे हैं कि तुम लड़की देखो क्या, तो आपने बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों पहना, एक क्यों किया, एक अरे अब तुम इस बहस में मत पड़ो, चाहे बढ़िया पहने हो चाहे खराब पहने हो, क्यों तुम तो लड़की देखो ना, कि देखें क्या कपड़े तो पहने, देखो भैया लड़की को कपड़े पहने ही देखना पड़ेगा, सभ्य लड़की तो एक समय भी कपड़ों से रहित नहीं होगी, वो तो कपड़ों से रहित ही रहेगी, ख्याल में आई ना, फिर भी वो गोरी भूरी है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है, जान लिया जाता है और उससे काम होता है, ऐसे ही तुम्हें पर्याय से रह द्रव्य देखना है तो पर्याय को अलग कर दो, द्रव्य को अलग कर दो। ऐसा कभी तीन लोगों को तीन काल में होगा नहीं। वो पर्याय और द्रव्य तो एकदम एक मेक ही रहेंगे और उसी वक्त तुम पर्याय से रह द्रव्य देख सकते हो, जान सकते हो। ऐसी शक्ति तुम में है, अपनी उस शक्ति का उपयोग करो। क्या तुम अपनी उस शक्ति का उपयोग करो और जानो। तो एक द्रव्य दृष्टि से द्रव्य अशुद्ध रूप परिणामा है। तो वो क्या कहते हैं कि हम जब परिणामी कहते हैं द्रव्य को तो हमारे ख्याल में पर्याय आती है। तो तुम अपने ख्याल को बदल दो ना। क्या कि हम द्रव्य के बारे में कहा जाए तो द्रव्य को अपने तुम्हारे ख्याल में लाओ ना। तुम उस वस्तु को क्यों बदलना चाहते हो? क्या तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है ना, और मिथ्या दृष्टि मिटना है तो दृष्टि ये तुम में परिवर्तन होना है ना, तो तुम अपनी दृष्टि को सम्यक करो ना। तो वस्तु में फेरफार करने की बात क्यों करते हो? वो वस्तु का थोड़ी ठीक होनी है, वस्तु तो ठीक ही है। ठीक तो तुम्हारी दृष्टि को होना है ना, दृष्टि अपनी ठीक करो। तो वो कहते हैं हमें परिणामी कहते हैं तो परिणाम ख्याल में आता है। तो मैंने कहा अच्छा क्या कहें? अपरिणामी कहो। क्या मैंने कहा अच्छा अपरिणामी कहेंगे तो परिणाम ख्याल में नहीं आएगा। अच्छा क्योंकि परिणाम एक में परिणाम से सहित का और दूसरे में परिणाम से रहित का, परिणाम तो खड़ा ही रहा ना, दृष्टि में से ओझल कहां हुआ? न परिणामी कहने से ओझल होता है ना परिणामी कहने से ओझल होता है, क्योंकि वो परिणामी ये विधि का कथन है और अपरिणामी ये निषेध का कथन है। लेकिन पर्याय तो खड़ी ही है ना, अपेक्षा तो पर्याय की ही चल रही है कि वो पर्याय से सहित है कि रहित है, है क्यों? अपेक्षा तो वही चल रही है ना। इसलिए कोई अपरिणामी कह देने से बहुत बड़ा वो हो जाएगा खेल, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे पहले मैंने सोनगढ़ का पंच कल्याण कहा और संजय 74 में महावीर मंदिर का, तो उस वक्त शाम के व्याख्यान में मैंने बताई थी। बहुत लोग आए थे, लालू भाई भी थे कि साहब मैंने हम बहुत ध्यान लगा के सुन रहे थे कि आप कहाँ तक जाते हैं, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच गए, हमको अंदाजा नहीं था कि आप भी यहाँ तक पहुँच। क्या इसमें क्या है? तो सीधी सीधी सरल सी बात है, इसमें कौन सी गजब की बात होगी? परिणाम परिणाम के बिना का परिणाम के बिना का परिणाम के बिना का। चाहे देखो आप पधारो चाहे नहीं पधारो, हमारे यहाँ फला आदमी तो आएंगे आएंगे। क्या तो ये साहब उनकी अपेक्षा होगी कि साहब आपको जरूर पधारना है, हमारे यहाँ वो नहीं आएंगे। आप चिंता मत करो, हम उनको नहीं बुला रहे हैं। तो तेरे को तो दृष्टि में से हटका रहे वो, है फिर भी कहेगा हमने नहीं बुलाया ना, देखो तो आती है तो नहीं ना। और तू क्या कर सकता था? आना नहीं जाना तो उनके हाथ में है। तू बुलाता तब भी वो सामने वाला आ जाता है, अकेला तू ही कसाई थोड़ी है, तेरे से कम कसाई वाली थोड़ी है। क्या कि तुम्हें ऐसी उपेक्षा बताएगा तो वे दौड़े दौड़े चले आएंगे? ऐसा नहीं है। तो इसमें लगा ना मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणामा है। एक बात ध्यान देने की, अब ये राजमल जी को तो बहुत परम अध्यात्मी माना जाता है, इसलिए उनने ये कह दिया तो वो सब वो वाले मान जाए। कौन? जो उस पक्ष वाले हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा था, वो कहें तो ए लेन दिखा देना उन्हें। ए लेन दिखाते ही बिल्कुल जैसे सांप का मंत्र बोलो ना तो सांप का जहर उतरने लगता है, ऐसा उनका जहर एक सेकंड में उतर जाएगा। क्योंकि राजमल जी के प्रति उनकी बहुत आस्था है, क्योंकि गुरुदेव ने ऋषि प्रचन किए, उनकी बहुत महिमा के गीत गाए थे और वो उनने सुने हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। इस कारण सूत्र सिद्धांत के, अब सुनो यहां से पढ़ो कि क्या क्या तुम काम करो तो वे कोई काम हमारे काम के नहीं है, धर्म नहीं है। कौन कौन? सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप माने स्वाध्याय, पाठ होता ना स्वाध्याय का एक भेद, माचना प्रेक्षा अनुपेक्षा आमना है। अगला बोल नहीं लेना, पांचों ही लेना है। सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है अथवा वित्त तपश्चरण रूप है अथवा दान पूजा दया शील रूप है अथवा भोगाविलास रूप है अथवा क्रोध मान माया लोभ रूप है, सभी को एक लेन में खड़ा कर दिया। कहां से? स्वाध्याय से लेकर वित्त तप शील संयम पूजा पाठ दान वगैरह और फिर क्रोध मान माया लोभ उसी लेन में। ठीक है, ये सब मेरे कहने का अंदर, जब पंडित लोग ऐसी बात करते हैं ना तो दयादान पूजा वाले व्यवहार को तो समझते हैं, मेरे को कह दिया कह दिया कह दिया, लेकिन तेरे स्वाध्याय रूप भी तो कह दिया ना, व्यवहार स्वाध्याय ये पढ़ना पढ़ाना, इसको भी तो वही कहा है ना, ये भूल जाता है। सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप ये छोड़ देता है और वो सब उसमें उनको गिनाता है। अरे ये भी तो एक क्रियाकांड है, वो नया क्रियाकांड विकसित हो गया है। एक ने स्वाहा वाला क्रियाकांड अपनाया था, एक ने स्वाहा वाला नहीं गया, तो खत्म मैं पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ सुनता हूँ पढ़ता हूँ लिखता हूँ, इसमें अपने को जो अहम मान करके बड़ा एक क्रियाकांड से निकला और दूसरे क्रियाकांड से चेंट गया। थोड़ा ऐसा अपेक्षा से कि पहले नाबालिग क्रियाकांड में पुण्य बंद होता होगा यदि वो सही परिणाम होगा तो, लेकिन ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, इस दूसरे में पुण्यबंध के साथ कुछ सीखने को भी मिलता है। पर ये इन दोनों में आपस में तुलना करो तो ये फर्क है। अभी और कठोर भाषा में कहूं कि दो बुराइयों में से एक चुननी हो, क्या पहले तो ये नक्की करो कि दोनों ही चुनने लायक नहीं है, लेकिन एक के चुने बिना नहीं चल सकता है तो मुझे ना एक कपड़े पहनना क्या नहीं पहनना, सबसे बढ़िया बात तो तुम दिगंबर हो जाओ, मुनिराज बन जाओ, सतमे सातवे गुणस्थान वाले, इससे बढ़िया कोई नहीं है। और यदि पहने बिना चले ही नहीं तो फिर सादा वेश है कि फिर सादगी वाले पहनो, ये विभिन्न विभिन्न कलर कलर वाले रंगीन पहनने से क्या मतलब है, क्या आप सुने ना, और दूसरी बदल बदल के लेने से क्या मतलब है, तो एक मतलब फिर इसमें ये भेद है, वो नहीं पहनने में ये भेद नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा मुनिराज कैसे कपड़े नहीं पहने, सफेद में मैंने सूट पहन तो नहीं पहने और धोती कुर्ता, उसमें क्या पहने और क्या नहीं पहने का सवाल ही नहीं है, वहां तो नहीं पहने आ गया। तो देखो ये जो लिखे है ना ये शब्द, इस पर ध्यान नहीं जाता था लोगों का, ये तो कलश जी का कोई पढ़ता नहीं था और पढ़े तो इन पे ध्यान नहीं जाता था, तो बनारसी दास ने इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जिसे आगरा की गलियों में सिनेमा के गाना जैसा गाया जाता था। उन्हीं के कथन है, देखो उक्त कथन में पांडे राजमल जी ज्ञानी के क्रोधादि भावों और भोगाभिलाषा, देखो क्रोधादि मन द्वेष और भोगाभिलाषा मन राग को भी ज्ञान भाव में घटित कर रहे हैं ज्ञानी के, ज्ञानी के क्रोधादि भाव और ज्ञान अभिलाषा और अज्ञानी के तपस्या और दान पूजा को भी अज्ञान भावों में घटित कर रहे। ज्ञानी के क्रोधमान माया लोभ और भोगाभिलाषा ये भी ज्ञान भाव कह रहे, और अज्ञानी के दया दान वित्त पूजा और स्वाध्याय ये भी अज्ञान भाव। ये क्या एकदम अन्याय जैसा नहीं लगता आपको? ये सारा जगत इस बात का विरोध करता है आपकी बात का, तो वो कौन सा गजब करता है, ये बहुत ही नेचुरल है ना। पांडे राजमल जी के उस कथन को आधार बनाकर पंडित कवि बनारसी दास जी ने उक्त छंद का भावानुवाद इस प्रकार किया है, देखो पढ़ो। दया दान पूजा देख विषय का साया देख दो कर्म बंदे जो पहले किया ना ज्ञानवंत के भोग निजरा हित में, उसका उत्तर है, उसके उत्तर में कलश जो कलश टीका में गद्य में दिया गया है उसको इन्होंने पद्य में बांध करके रखा है, है इतना खोल के कि दोनों को एक ऐसा हे कहो, एक सा हे क्यों कहते हो, ये बहुत समाज होता है कि तुम हे कहो हम मानते हैं लेकिन एक सा कहते हो तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। जब अपन ने कुंड कुंड शतक लिखा था ना, कुंड कुंडाचार्य की 2000वां वर्ष मनाया था ना, तो उस बाद अपन ने कुंड कुंड के 5 ग्रंथों में से 101 गाथाएं इकट्ठी करके और उनका कुंड कुंड शतक नाम की किताब बनाई और उनका पद्यानुवाद उन्होंने सब वगैरह लिखा। फिर जैसे अन्ना जी चलाते हैं ना अपना कंठपाठ, तो उस साल कुंड कुंड शतक का कंठपाठ देश में बहुत तेजी से चला। और जैसा मैं महावीर का निर्माण वर्ष था उसमें सारे देश में घूमा था, एकदम जोरदार दौरा लगाया था, ऐसे कुंद कुंद के दूसरा शताब्दी वर्ष में भी घूमा था, गांव गांव गया था। फिर अपन लास्ट ईयर गए थे ना ऐसे, अभी ऐसे उस वक्त भी गया था गांव गांव, मैं साल में 9-10 महीना घूमते ही रहा गांव गांव में जाकर के। तो वो कुंद कुंद शतक पहुंच गया था तो गांव गांव में सब बच्चे बच्चे को कंठस्थ याद हो गया था। तो उदयपुर में गया, उदयपुर पहले से ही कुछ अपना उसमें पक्ष में कुछ ज्यादा ही रहा है, तो वहां कह दिया था दादा कि पूरे गांव में तो 101 लोग कुंड कुंड शतक के एक एक बैनर पे लिखकर 101 बैनर पूरे सड़क पे लगाए थे, यहां से अपना जुलूस निकलना था ना, तो पूरी सड़क पर वो 101 बैनर बना के तो एक एक बैनर पर एक एक गाथा का पद्यानुवाद हिंदी का, और वो सारे बाजार में लगा दिया था। मुझे तो तब वो जुलूस में निकले तभी मुझे दिखने में आए, और सब बच्चे बच्चों को कंठस्थ था, और उसका जो बन गया था अपने आप कैसे तो कैसे बिल्कुल दिनभर चलता था। तो उस वक्त अन्ना जी भी अपने यहां से ज्यादा नहीं उस सीमा तक नहीं जुड़े थे, जुड़े तो थे ही लेकिन वो भी वहां गए हुए थे, और वहां पर सुतसागर महाराज, आप सुन राजन जी सुतसागर महाराज जो बोल रहे थे ना, वो भी वहां मौजूद थे, और नीरज और नीरज की बहन जो विशुद्धवती माता जी थी वो भी सब मौजूद थी। तो जो उनके पास भी जाते थे, इधर भी आ जाते थे, वहां भी जाते थे, उनके पास बहुत चर्चा करते थे अन्ना जी, सुतसागर महाराज से बहुत चर्चा उनकी होती थी। तो उनने कहा इनसे कि यद्यपि ये गाथाएं कुंद कुंद की हैं और कुंद कुंद ने लिखी हैं, इसलिए इनका विरोध तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमको अच्छा नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता, जब कुंद कुंद की गाथाएं तो कुंद कुंद की गाथाएं अच्छी नहीं लगती, वो तो अच्छी लगनी चाहिए ना, क्यों? तो उनने कहा कि कोई कुंद कुंद जैसे मुनिराज कहें तो हम सब सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये 16-16, 15-15, 14-14 वर्ष के छोकरे और ये गली गली में गाते फिरे क्या है? क्या है? जो नारियों को क्या है, वो नारियों को छेड़ते श्रवण नहीं तेरे, 3-4 गाथाएं है ना, राग करते नारियों से, मतलब ये जो गाथाएं है ना, अब वो लिखा है उसमें बहुत कठोर भाषा में, मैंने तो उसे सरल किया है, वे श्रवण नहीं प्रियंश है, क्योंकि वे तो उसमें तो ये लिखा है कि वे निबोध जाएंगे, क्यों तो निबोध ही क्यों नहीं लिखा तुमने, त्रंत क्यों लिखा, क्योंकि निबोध त्रंत गति में है, त्रंत गति में है निबोध, निबोध 4 गतियों में से कौन सी गति में है, त्रंत गति में है, तो त्रंत गति हमने लिखा कहां गलत किया, लेकिन निगोध तो ज्यादा बड़ी गाली है, तो हमने तो इसको सॉफ्ट किया है, आप समझे ना, ऐसा और भी कई जगह बताऊंगा कि हमने वो उतनी कठोर भाषा नहीं लिखी जितनी वो कुंद कुंद के पहाड़ में है, तो वो भी कोई लोग कह सकते हैं आपने कुंद कुंद के साथ अन्याय किया, लेकिन उसके पीछे न्याय है कि वो है ना, लेकिन बोले ये कहते फिरते हैं गली गली में, और ऐसा हर बोर्ड पर लिखा है और पूरे बाजार में लगा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं, کیسے کیا ان کے منہ سے نہیں سن سکتے. یہ تو کند کند کے سرداد جی سمارے میں کند کند کی گاتاؤں کا پاٹھ کر رہے ہیں, سنسکرت میں تو لکھے ہیں, پراکرت میں تو ہیں, اب وہ ہندی میں کہہ دیا تو سب کی سمجھ میں آتا ہے. پراکرت کا کرتے تو تمہیں اعتراض نہیں کیوں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری دقت تو یہ کہ ساری جنتا کی سمجھ میں آ رہا ہے, یہ دقت ہے. نہ سمجھ میں سے کوئی دقت نہیں ہے, خوب گاتاؤں بولو. کیوں ہمارے یہاں تو کتنی بول پڑتی چلتی تھی, ابھی کیا بتاؤں. یہ اجے شادی وواہ کرتے تھے نا, اور یہ پنچ کلیانک بھی اب میں کیا کہوں, ان میں جو کرتے ہیں ہبن وبن وغیرہ کچھ کرتے ہیں پوجا پاٹھ میں, وہ حصہ جو سماپن کے سمے پہ کرتے ہیں نا, سمجھ لو آپ کیا ہے, سمجھتے گئے نا دادا. اس حصے کو میں ایک پوجا تھی سنسکرت میں جو سب پنڈت بولتے تھے, میں نے وہ منگلا جی تھے نا پرتشاچاری تھے اور وہ پرتشائیں کراتے تھے, ان کے منہ سے سنا تھا سب سے پہلے اشوک نگر میں کہ وہ کیا نام کامت جل تین گولیا ایسا سند تھا, کامت جل تین گولیا مل مجھ سے پتوام, اس میں گئے جی کو نمسکار ہے نا, لمبو درو دنت مکھو گنیشا, یہ سب سند بولتے تھے. لمبا ہے پیٹ جن کا, دانت وہ دانت دنت مانے ہاتھی جیسا ہے جس کا, لمبو درو دنت مکھو گنیشا, یہ دنت بولتے تھے. شادی کرانے میں تمہاری شادی میں بھی بولے ہوں گے پنڈتوں نے, اور ان سب میں وہ پنچ پرمیش جی کی پوجن تھی. وہ آ کر نئی نئی اپن نے بنا لیے نا اپنے حساب سے, وہ ہر کریا کانڈ میں پنچ پرمیش جی کی پوجن چلتی تھی. تو اس میں کیا لگا تھا, گنیش کی اتپتی کیسے ہوئی سنسکرت میں کوئی سمجھتا نہیں تھا. درباگی سے ہم نے سنسکرت پڑھ لی تھی اور تھوڑا سا ادھیکار اچھا تھا, تو ہم یہ کیا بولے, کیا لکھا, کامت جل تین رودرین کامت جل تین گوریا, رودر مانے رودر, اپنا مہادیو کو رودر مانتے نا, گیارہ رودروں میں ہیں کہ رودرین کامت جل تین, کام کی آگ میں جلتے ہوئے رودر نے مانے مہادیو نے, گوریا مانے پاروتی کے میں جو مل کا چھیپ کیا, کیا ہے رودرین کامت جل تین گوریا, اور مل مچھ تین جو مل کا اچھے پیا اور اس سے گنیش کا جنم ہوا. ایسے دانت والے مکھ والے اور لمبے پیٹ والے گنیش جی کو میں نمسکار کرتا ہوں. اب یہ چھند بولا جاتا تھا, رودری نے کامت جل تین گوریا, آپ سمجھے نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, سنے نہیں آئے, میرے کو بہت اٹپٹا لگا. تو میں نے ان سے اکیلے میں جا کے پوچھا, اب وہ میرے دادا جی کی عمر کے تھے, کیا پنڈت جی, میں تو تھا کبھی 20-21 برس کا, پر وہ تھے 70 اور 75 برس کے. پنڈت جی یہ کیا ہے, گنیش جی کا اپنے ہاں کیا ہے, نہیں تم سمجھتے نہیں آؤ, گندھر گنپتی مانے گندھر, اپنا گندھر ہوتے ہیں نا تیرتھنکروں میں, تمہیں تیرتھنکروں کو ہی کیوں نہیں نمسکار کرتے, گندھروں کو کیوں کر رہے ہو, کہیں نہ کہیں سے بیٹھا نا. گنپتی مانے گوتم سوام جی کی بات ہے, یہ تو گندھر دیو کی بات ہے. تو میں کہا یہ سارے وشیشن ہیں یہ گوتم سوام جی کے ہیں, لمبو درو دنت مکھو, سمجھ گیا نا, اصلیت میں پرانے زمانے میں اپنے جینیوں کی شادیاں بھی سے براہمن پنڈت ہی کراتے تھے, جینیوں میں کوئی ایسا ہوتا نہیں, ہمارے زمانے تک کی بات ہے, ہماری کسی براہمن نے نہیں کرائی, تمہارے گرو جی نے کرائی تھی, لیکن اس وقت ہم بھی یہ سب سمجھتے تھے, تو ہم نے کہتے نہیں بن گئی دھرا ہوں, میں بولتا ہوں, میں خود بولا نا, سمجھ گیا نا, کیا तो उस वक्त जो तुम परिषद भी कह रहे थे ना, तो उस वक्त ये जैनवाय विधि बनाई गई अपनी। तो पहले तो उन ब्राह्मणों ने ये कहा कि हम ही बना देते हैं, तुम क्यों अपनी अलग बनाते हो, और हम ही करा देंगे। तो उन्होंने उसी स्टाइल पर अपनी जैन पूजनों की विधि भी बना दी। अपवित्र अपवित्र बात हो रहा ना, नहीं पूरी बात सुनना शांति से। ये उनके यहाँ ऐसे ही का ऐसा है पूरा, अपवित्र अपवित्र स्वस्थ दुष्टो विवाह ध्याय नमस्कार हम अपने पंच परमेश्वरी के लिए है, लेकिन उनके यहाँ मानो उनके उनके भगवान के लिए होगा है। उन्हें पुंडली का क्षम आशा ना, उनके यहाँ पूरे छंद ऐसे ही के ऐसे है। वैसे अपना था मंगलम भगवान वीरो, ऐसे उनके यहाँ भी बिल्कुल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ध्वजा मंगलम पुण्यली काक्षो मंगलाय हरो हरि। तो उन ब्राह्मण पंडितों ने ही हम जैनियों के बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा बदल के, उन्हीं में ज्यादा उन्होंने चेंज नहीं किया, अलग से नहीं बनाया। वे विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे बना सकते थे क्यों, और उन्हें बदल के कह दिया अब तुम्हारा हो गया ना, वो महावीर आ गया, अर्घम फलाना आ गया, जी आ गया, गौतम गणधर आ गए, जी आ गए, हम वस्त्र बहुत दिनों तक वो चलता रहा। फिर क्या करेंगे, अब तो पंडित ही जैन तैयार हो, हम ही कराएंगे, उन्हें नहीं कराएंगे, वो सब बातें शुरू हुई। तो एक मैं बीच में बात और सुना दूं, इतिहास की बात है, तुम परिषद वाले बैठे हो तो सुन लो कि अशोक नगर में जो है ना, चंद्र जी के पास अशोक नगर गुना मध्य प्रदेश में पहले पछार कहलाता था, जब वो पछार था तब की बात है कि वहां पर वो ब्राह्मणों से बंद करवा के जैनियों ने अपनी शादियां करना शुरू कर दी। तो ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिलती थी उससे वो बहुत असंतोष हो गया, और बहुत असंतोष हो गया तो जैन और हिंदुओं का बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा हुआ कि अपना पर्यूषण चल रहे थे, सच्ची घटना है, पर्यूषण चल रहे थे और दो उसके बीच में 11 साथी है, 11 के दिन उनका जुलूस निकल रहा था, और जुलूस निकलते निकलते वो हमारे जैन मंदिर के सामने आया, वो गंज के मंदिर के सामने, जो जानते हैं वो लोकेशन पंडित जी ख्याल में आ गए। तो वहां आया तो वहां किसी आदमी ने वो बिल्कुल जयपुर जैसी घटना घटी, कह दिया कि उनकी वो मूर्ति खंडित हो गई क्या, और वो इसलिए बस वहीं पर वहीं रख दिया कि किसी जैनी ने ये मूर्ति खंडित कर दी, और ऐसा कह के मंदिर के सामने उस जुलूस को रोक दिया और वहीं बैठ के उसको पाठ करने लग गए, और वह 24 घंटे अखंड पाठ शुरू हो गया वहां पर, और जैनियों की मारपीट शुरू हो गई। अब जैनी मंदिर में बंद थे वो मंदिर में ही बंद रह गए, और जो घर थे वो मंदिर नहीं आ सकते थे, मंदिर वाले घर नहीं आ सकते थे। तो बहुत बड़ा जैन जैन का झगड़ा हो गया, खूब पिटाई हुई जैनियों की। खैर उस वक्त ग्वालियर महाराजा का राज था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब की घटना है जी। तो फिर सबसे हुकुम सिंह जी थे ना, और उनके संबंध सब राजाओं से अच्छे थे, होलकर से भी थे और सिंधिया से भी थे। फिर उनको लिए तार फोन वगैरह हुए, और वहां पर जाकर के उनसे कहा, फिर उन्होंने जाकर के वहां से दीवा दीदा से माधवराव थे तब, फिर माधवराव इनके दादाजी माधवराव उनसे कहा, फिर उन्होंने वहां से कह करके सब व्यवस्था कराई, शांति रखी, कर्फ्यू लगा रहा 5-7 दिन। फिर वो अंग्रेज कलेक्टर कोई अंग्रेज कलेक्टर तो अंग्रेज से नीचे नहीं होता था, कोई हिंदी कोई कलेक्टर नहीं बन सकता था। तो एक अंग्रेज कलेक्टर वहां आया, उसकी ड्यूटी लगाई, और उसने कहा कि सब तुम समझौता करो। तो समझौता कराने के लिए जैनियों के 5-4 नेताओं को बुलाया, 4-5 हिंदुओं के नेताओं को बुलाया, और बैठ करके वहां पर इनमें चर्चा हुई कि तुम अपना पक्ष रखो, तुम अपना पक्ष रखो। वो तो अंग्रेज था, कुछ समझता नहीं था हिंदी में, दुभाषिया रखे होंगे। तो उन लोगों ने सब अपने पक्ष रखा कि हमारे घायल हो गए, लक्ष्मण जी की निकल रही थी राम लक्ष्मण की सवारी, तो लक्ष्मण जी घायल हो गए, तो इसलिए वहीं रुक गई सब। ऐसा है, और हमारा तो जब तक नहीं हट सकता, कब तक नहीं हट सकता कि जब तक हमारे बनारस से पंडित आएंगे बड़े बड़े, और वो जब करवाएंगे इसकी दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा और इसका सारा वो करेंगे, तब वो इसके यहां से जा पाएगा, और वो हम सोचेंगे कब बुलाना, समझ रहे ना। میں نے چھ مہینہ تک سال بھر پہ ہمیں نہیں یہیں پہ جب آگے رہیں گے اور ہم نہیں کریں گے. اب بولتا تو وہ کلیکٹر نے کہا جلدی مجھے تمہیں دینی ہو جائے, تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو بیرسٹر صاحب تھے, بیرسٹر صاحب بیرسٹر میرسٹر تیسری کلاس پاس تھے, لیکن ایسے قانونی مدوں پہ ان کا دماغ بہت چلتا تھا. یہ امولہ چند بندو کے پتا جی, میں نے دیکھا ہوں گے بیرسٹر صاحب کو, ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے. تو وہ سماج کے ادھیکش تھے, تو وہ گئے بیرسٹر صاحب سنگے ٹھنگے سے موٹے موٹے سے تھے گول مٹول. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے کہ بالکل صاحب گھائل ہو گئی ہے لکشمن جی کی مورتی, تو ہمیں بھی بہت دکھ ہے, اور اس کے ان کے علاج کے لیے جو بھی ہوتا ہو وہ سب کرایا جائے. جو ہندی ودوان بتائیں, ہندو لوگ جو بتائیں وہ کریا کان پورا کرایا جائے, اور اس میں ہم سب برابری کے حصے دار ہیں. اس کا خرچہ پانی جو ہوگا وہ ہم سب سماج کریں گے, ہم بھی یعنی ہندو لوگ بھی کریں اور ہماری حیثیت سے ہم بھی اس میں کریں گے. انہوں نے کہا اتنا اچھا بڑا پرستاؤ پھر کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہٹا دو وہ یہ کرانے تیار ہیں. تو وہ نہیں نہیں تھا, وہ ہٹ نہیں سکتے وہاں سے, وہ تو ان کا سنیند تھا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ان کے پنڈت نے باتیں کری, پھر ان سے کہا, یہ بولے بنا پنڈت گئی ویسے صاحب بولے کہ لکشمن جی کو جب وہاں شکتی لگ گئی تھی میں لنکا میں یدھ کے سمے پہ, تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ان پنڈتوں سے کہ ان کو لکشمن جی کو بے ہوش ہو گئے تھے تو وہیں چھوڑ دیا تھا یدھ کے میدان میں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنے کیمپ میں لائے تھے اور ان کا علاج کی ویوستھا وہاں کی تھی, کیا کیا تھا ان سے پوچھو کیا؟ بہت بار ایک بات سن رہے کیا؟ تو اس وقت کیا ہوا تھا جب لکشمن جی کو شکتی لگی تھی اور جب وہ گھائل ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے تو ان کے علاج کے لیے ہنومان جی کو دوڑایا تھا, وہ بوٹی لائے تھے پروت اٹھا لائے تھے, تو وہ سب کہاں ہوا تھا؟ وہ وہی ہوا تھا کہ ان کے کیمپ میں رام کے کیمپ میں لے آئے تھے کیوں, اور وہاں ان کی سب طریقے سے سنبھال کری تھی. سب وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندو کے میدان میں تو وہاں لائے ہوں گے, وہاں رکھا ہو علاج کیا ہوگا. تو یہی ہمارا نویدن ہے کہ لکشمن جی کو پھر شکتی لگ گئی ہے تو ان کو یہاں سے اٹھا کر کے کیمپ میں لے جائے گا, اور پھر جو علاج کرانا ہے بنارس سے جو بوٹی بلانی ہے اس میں ہم تیار ہیں. تو یہ بات جب انگریز کلیکٹر نے سنی, بات تو سچی ہے, ٹھیک 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 ہے, اٹھا اٹھا. اس نے ایسا آرڈر دیا تو سب جینی بھی لوگ جا کر کے بڑی بنائی کے ساتھ اور وہ پارکی کو لے کے کندھا لگا کر کے لے جا کے اٹھ کے مندر میں رکھ دی. اور اب جیسے بنائیں گے تب کریں گے, تب ہم سب تمہیں کیا سہیوگ کریں گے. میں یہ بتاؤں اس کا پرنام تھا جی, یہ بات آئی کیوں؟ ان جینیوں نے براہمن پنڈتوں سے اپنی شادی وواہ بند کر دیے تھے اور اپنے پنڈتوں نے کرنے لگ گئے تھے, آپ کی سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے ان کا جو اسنتوش تھا ان نے یہ سب کیا تھا. پھر سماج کی میٹنگ ہوئی تو بیرسٹر صاحب سب سمجھتے تھے, تو ان نے سب پنڈتوں کو بلایا براہمنوں کو, اور ان نے کہا پنڈت جی آپ ہمارے یہاں شادی بھائی کراتے تھے تو اب آپ ہی کرائیں گے اور ہمارا پنڈت آپ کے ساتھ براجے گا, تو آپ براجنا اور وہ جو کچھ کرا اسے کرانے دینا, بس آپ شانتی سے براجے رہنا آپ کے سنرکشن میں, اور آپ کی جو گردرشنا ہوتی تھی وہ آج سے سبائی اور وہ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی آپ سب کو, خیال میں ہے نا؟ وہ پرمپرا چالو کر دی, وہ شانتی ہو گئی. مانے یہ اس وقت کی وہ آپ سمجھیں گے آپ کیسے آیا اپنے یہاں رین کام اجل دین. اب یہ سب ہم سب باتیں جانتے ہیں, تو اپوتر کون سا پرانا ہے ہمارا, ہاں ہماری نقل ان نے کی کہ ان نے ہماری نقل کری, اب ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے, نکلی جھگڑا لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کیوں کیا؟ یہ تو ہمیں یہ سو سوا سب اس میں نے بولا نا, ہم بچے تھے تب تک یہ سب چلتا تھا, آنکھ میں دیکھا کام ہے. تب تک یہ چلتا تھا, हम तो बहुत विद्यार्थी अवस्था में बहुत सक्रिय थे ना, इस बात में समाज में क्या चल रहा है, रोजिना उसके अखबार आते थे, वो पढ़ते थे जैन समाज के, और उनमें क्या झगड़ा कहाँ चल रहा है, तो बहुत बहुत रस था इसमें, समझ लो। इसलिए हमको सब बातें याद है, पता है सब, कहाँ कैसा हुआ, ये चीजें कैसे कहाँ से आई है, ये सब जो अपने आप समझ गए ना, तो वो है उसका है। हमारे लिए एक शंभुनाथ जी त्रिपाठी पढ़ाते थे साहित्य, वो मालूम शंभुनाथ त्रिपाठी क्या थे, 7 तीर्थ और 5 आचार्य, पंचाचार्य और 7 तीर्थ, जब न्याय तीर्थ है ना, ऐसे उन्होंने 7 तीर्थ पास किए थे, न्याय तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, काव्य तीर्थ, वेदांत तीर्थ, ज्योतिष तीर्थ, समझिए ना, और 5 आचार्य है ना, व्याकरण आचार्य, साहित्याचार्य, जैन दर्शनाचार्य, बौद्ध दर्शनाचार्य, समझे, ऐसे 5 आचार्य और 7 तीर्थ थे। तो हमें वो क्या पढ़ाते थे, चंदा प्रभु चरित्र, धर्म शर्मा बुद्ध, एक कोर्स में थे उस वक्त, तो वो जो पढ़ाते थे तो उसका एक अर्थ जैनियों के हिसाब से निकालते थे और उसी छंद का दूसरा अर्थ वैष्णवों के हिसाब से निकाल के हमें बताते, हर छंद का बोलो, कितने विद्वान थे, उन्हें कितनी पकड़ थी, कितनी गहरी है, थोड़ा एक उदाहरण देके बताओ, इसमें तो है ना, उसका तो पहला छंद है, श्री नाम विष्णु आदिनाथ भगवान के स्तुति का मंगलाचरण है, और वहां से शुरू होता श्री नाभि सुनो, नाभि राय के पुत्र, सुनो माने पुत्र और नाभि माने नाभि राय के, ठीक है ना, वो एक अर्थ वो निकाल देते थे, फिर दूसरा अर्थ करते थे नाभि सुनो माने नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, उनके यहां ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी नाभि से पैदा हुए थे, और पूरे छंद का अर्थ वो आदि ब्रह्मा, अपने आदिनाथ को आदि ब्रह्मा बोलते या नहीं बोलते, तो ये ब्रह्मा जी को नमस्कार उसमें एक निकाल लेते हैं, वो ऐसा हरेक में निकालते हैं। धीरे धीरे पंडित मंगला जी को जब पता चला तो धीरे धीरे फिर उन्होंने भी छुट्टी कर दी, फिर आप पधारो, फिर अपने राधेला जी व्याकरण तारी थे ना, फिर वो आए, फिर वो अपने पढ़ाने लगे, जैन जैन व्याकरण में तारी थी। तो भाई उस वक्त जो परिवर्तन जो हुआ ना क्रांति काल, वो हमने सब देखा है, हम उससे बहुत भली भांति परिचित हैं, तब हम आपसे ये बात कहते हैं, कुछ जो बातें आपके लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उन्हें थोड़ा अंदाजा आपको लगे, ये किसी समय सार में घूमर सार में नहीं मिलेंगी, जी आपको 8 वर्ष की उम्र से जब हमने पढ़ना भी सीखा था, तब से इस जैन समाज की परिणति की नस नस हम जानते हैं, जैन शास्त्रों के उसमें बहुत गहराई से, मेरा मतलब समझिए ना, देखा जाना है सब, तो ये पढ़ गए ना, देखो दान पूजा दिख विषय कसाया दिख, दो कर्म बंध रूप दोहू को एक खेतु है, ये दया दान पूजा, तो एक तरफ ये ले लिए 3, अब वो देखो वो छूट गया यहाँ पर, कौन शुद्ध सिद्धांत के पाठ रूप, दया दान पूजा रह गया, शील है ना, दया दान पूजा दिख, और फिर दूसरे विषय कसाया दिख, 5 इंद्रियों के विषय और क्रोधादि कसाय, दो कर्म बंध, ये दो कर्म बंध के कारण है, एक अशुभ कर्म बंध के कारण है, एक पुण्य के बाद बंध का कारण है पाप, ये कहते हैं पुण्य पाप का भेद क्यों करें, कर्म बंध का कारण तो है ना, अब कौन सा कर्म बंधेगा ये डिटेल की बाद में निपट लेंगे, दो कर्म बंध, यद्यपि दोनों कर्म बंध है पे फिर भी दोहों को एक खेतु है, दोनों एक ही खेत में पैदा होते हैं, वो अनाज जो तुम्हारे खाने के काम आता है वो, और वो घास जो पशु लोग खाते हैं, और वो जो कूड़ा करकट जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो सब एक खेत में ही पैदा होते हैं, क्या दया दान पूजा दिक दुसय कसाया दिक दो कर्म बंद
दोनों को एक खेत है, दोनों का एक क्षेत्र है, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में दोनों एक साथ रहते हैं। वो क्या कह रहे, वो पूजा पाठ भी वहीं पैदा होता है और गुस्सा भी वहीं आता है, वही हृदय है ना। भगवान की भक्ति भी वहीं आती है और गाली देने का भाव भी यहीं से खड़ा होता है। ये दोनों एक ही खेत के पैदावार है, दोनों को एक खेत है। ज्ञानी मूल कर्म करत दिशे, ज्ञानी और मूल माने मूर्ख, अज्ञानी दोनों कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक साथ। वे एक से दो करत दिशे, एक से पे माने परंतु किंतु, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देती है। अब परिणामों के में फर्क से दोनों अलग अलग फल देता है। अब ये परिणाम भेद बहुत खतरनाक है। यहाँ क्या गलती होती है देखो, खतरनाक माने जैसे रोड पर लिखा रहता है खतरनाक मोड़, यहाँ तुम ड्राइवर को सावधान होने की ज्यादा जरूरत है। के परिणाम नारो नारो क्या कह रहा था मैं, हाँ पर परिणाम भेद, वो दोनों ही चारित्र गुण की परिणति पे लगा लेते हैं। हम क्या लगाते हैं कि एक तो अभी बात चलती है, हम भी कहते हैं कि एक तो भगवान का भक्ति कर रहा है उसे तो मोक्ष चाहिए, मैं तो मोक्ष और कुछ नहीं चाहिए, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव है ना, और इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और विषय में ना ही लुभाऊं रागादिक दूसरी, एक ही। और दूसरा कहता है नहीं नहीं मुझे तो भोग सामग्री चाहिए। तो ऐसा परिणाम का भेद होने से अलग अलग फल हो जाता है, ऐसा अर्थ कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, बोलो पुरुषोत्तम बाबू सोचो माथा लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है कि एक भगवान से विषय कसाय की चाय के लिए पूजा भक्ति कर रहा है ना, मेरा बच्चा की तबीयत ठीक हो जाए, मुझे बीमारी होगी बीमारी ठीक हो जाए उसके लिए कर रहा है, बोलो वहां तक बोलते हैं भगवान से पक्की बोली लगाते हैं, भगवान ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूंगा, तेरा एक मंदिर बनवा दूंगा, तेरा एक शिक्षक विधान कराऊंगा, पहले से पक्की करते है ना। और एक बिल्कुल निष्काम भाव से कहने महाराज मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मैं तो आत्मा का कल्याण चाहता हूँ, क्यों तो ये परिणाम भेद की नहीं। ये कहते हैं कि श्रद्धा गुण की बात है, ये चारित्र गुण की बात नहीं है। क्या एक की श्रद्धा में उसका कर्तृत्व बुद्धि नहीं है और दूसरे की श्रद्धा में उसमें कर्तृत्व बुद्धि है, मतलब वो परिणाम माने फिर श्रद्धा गुण का लेना चारित्र गुण का नहीं लेना, क्योंकि सारा प्रकरण श्रद्धा गुण का चल रहा है, ठीक है ना। ज्ञानवंत अब ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, अब ज्ञानवंत करनी तो करता है काम, वही क्रिया देखता है पूजा पाठ वृत्तशील संज्ञा, वो गुस्सा भी करता है, वो ज्ञानवंत शुभ भाव भी करता है अशुभ भाव भी करता है, अज्ञानी भी शुभ भाव करता है अशुभ भाव करता है, पर ये उदासीन रूप में फिर भी झगड़ा हो जाएगा, वही उदासीन था फिर हम चाहे त्रिपाली ले लेंगे। अब इसके लिए क्या करें, आप लोगों के भी ख्याल में आती ना बात क्या कह रहा हूँ, हमें सावधानी रखनी है, गायकी के श्रद्धा गुण की बात है, और हम रिश्ता घटा देते हैं बना, वो क्या समझते हैं कि वो जो उदास कर रहा है ना वो गुस्सा में भी उदास रहता होगा, गालियां बता रहता होगा तो उदास रहता है, अरे नहीं वो पूरी तरह इन्वॉल्व होता है ज्ञानी, खाना खाता होगा और उदास रहता होगा, क्यों ऐसा कुछ नहीं है, यदि नमक कम हो तो थाली फेंक दे कौन, सब में ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि का कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, यही तो मैं कह रहा हूँ श्रद्धा गुण की लगभग चले, यही तो मैं कह रहा हूँ उदासीन का अर्थ नहीं, वो श्रद्धा में ऐसा जानता है कि मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं, देखो ये अर्थ समझना। देखो मैं रेल में बैठा था तो वहां पर मेरे सामने कुछ हिंदू लोग भी बैठे थे, वो बहुत बड़े स्टेटमेंट लोग होंगे, और वहां से दूसरे डब्बे में उनका एक साधु बैठा था, तो वो साधु आया वहां और उनसे खाना साधु को उनने दिए, तो वो अपना एक कटोरा लेके आया था, सुनना इतना बड़ा कटोरा था, तो उनने उसको पूरी दी तो पूरी डाल दी, चावल दिया तो चावल डाल दिया, फिर सब्जी दी तो सब्जी डाल दी, फिर जो जो दिया उसने एक ही कटोरे में ऐसा बेसब मिक्सर करके डाल दिया और डाल लिया, और फिर एक लोटा पानी लेके उस लोटा पानी डाल दिया उस सब्जी में, खाने में सबने पानी डाल दिया। क्या कर लिया अलीन साहब, अभी क्या करें, हमारा तो ऐसा है कि हमारे लिए तो ये खाना माना बनाने वाले नहीं है, अभी बढ़िया बढ़िया मसालेदार ऐसे ऐसे खाना बनाते हैं, हमारे गुरु जी ने हमको बताया कि हमको तो उसमें खाना नहीं खाना है, मैंने स्वाद के लिए नहीं खाना है, पेट तो खड्डा भरना है, तो खड्डा तो हमको इससे ही भरना पड़ेगा, लेकिन ये पानी डाल देने से और सब मिला देने से जो पेट में जाके मिलता वो कटोरे में मिला देने से सब बेस्वाद हो गया, मीठा भी उसी में और नमकीन भी उसी में और पानी से जो बैलेंस बिगड़ गया ना उसका, इतने से पानी में उतना नमक अच्छा लगता था, ज्यादा पानी हो गया तो वो रोना हो जाए, इसलिए हम इसको बेस्वाद करके खाते हैं, ऐसा हमारी गुरु जी आती है। अब वो तो अब सम्मान ऋषि तो नमिता ऋषि का तुम्हें कोई उसकी शंका तो है ही नहीं आपको कि वो क्या है, लेकिन वो भी ऐसा बेस्वाद करके खा सकता है, और एक चौथे गुणस्थान वाला खूब स्वाद ले लेके खा सकता है, तो अभी बता रहे थे ना आपको कल समझ प्रकाश जी कि वो कैसी कैसी खीर बनती है, कैसे कैसे लड्डू बनते हैं, कैसे कैसे बंगालियों को क्या क्या खिलाया जाता है, हैं समझे ना, और कोई नहीं खा सकता, चक्रवर्ती ही खा सकता है, पटरानी भी एक कौर दबा सकती, कितनी व्यवस्था होती थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता होगा, तनख्वाह तो उनको चुकानी पड़ती होगी सर्द संयोग की क्या, तो ये ऐसी उदासीनता नहीं जैसी आप देखना चाहते हो, और जैसी के कुछ लोग नकली दिखाते हैं क्या, ऐसी ये बात नहीं है यहाँ, आप मैं समझ गए क्या कहना चाहता हूँ, ये फर्क है, उदासीन ममता ने ममता ना करें, ममता माने अब ममता माने भी आज चार सौ ले ले दिक्कत तो ये है, ममता माने जो हमारे स्त्री पुत्र बाल बच्चों के प्रति जो राग है ना उसको ममता है, वो नहीं, ममता माने ये मेरा है ऐसी मान्यता, उसका नाम ममता है, एक एक शब्द में ये फर्क है, सबको श्रद्धा गुण से खरीद करना है, एक तो ममत वाली ममता है जी, वो राग वाली ममता नहीं है जी, हो सकता है बहुत निर्ममता दिखाई दे उसको, नेताजी कुछ नहीं हटा होता मुझे कुछ बात कुछ बात नहीं करना, क्या नहीं करना, छू मत लेना, ऐसा नहीं करना है ना, और एक तो बुद्धि बनी है, और एक बिल्कुल एक तो बुद्धि टूट गई है, बहुत प्रेम बेटा अच्छा प्रेम से बैठो, तो वो ममता माने वो ममता नहीं जो आपको दिखाई देती है, वो जो सामने वाला दिखने नहीं देता है वो ममता है। मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, वो बहुत बीमार रहते थे, अरे शुरू से ही थे जन्म बचपन से ही बीमार, उनको तिल्ली थी तो ऐसा पेट बड़ा रहता था, तो वो शादी नहीं हुई थी उनकी, हमारी माई सब सेवा वगैरह करती थी, तो हमारे घर के मेन गेट पे कमरे में वहां उनका पलंग पड़ा रहता था और वो लेटे रहती थी, हम लोग छोटे छोटे थे तो वो अपने पास में एक छोटी सी लाठी सी रखते थे, लकड़ी इतनी सी जैसी रखते थे, और जब हम वहां से निकलते थे ऐसा लकड़ी निकाल के ऐसे बताते थे, तो वो हम दौड़ के निकल के बाहर जाते थे, वहां से जैसा भी निकलना पड़ता था एक सेकंड भी वहां खड़े नहीं रहते थे, एकदम गांव घर गया निकल गया भाग गया, मेरे पकड़ पाता तो देखता है तो कुछ बोलते रहते चले जाते हम, फिर वहां से आते तो घर में जाते तब भी ऐसा ही होता, ये साहब हम उनको दाऊजी बोलते थे, दाऊजी से सब लोग बहुत डरते हैं, उनका नेचर ही ऐसा खराब है ना, वे डंडा लेके पड़े रहते बच्चों के पीछे, लोग तो डरेंगे ही ना, लेकिन जब थोड़े हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि वो कहते थे कि भाई
کیا کروں میں بیمار آدمی ہوں, اور یہ بچے آ کر کے پھر میری پلنگ پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر میری چھاتی پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر بال کھینچنے لگتے ہیں. اب میری ایسی شریر نہیں ہے کہ میں ان کو ایسا کھلا سکوں, اٹھا سکوں, ان گود میں لے سکوں جیسے بچوں کو چاہیے نا. ایسا میں نہیں کر سکتا. کیا پوری رکھوالی دھیان تو اس میں کر کے سب وہی رکھتے تھے, لیکن اس سے ذرا تھوڑا رکھتا ہوں ڈرا کر کے تو کم سے کم میں تھوڑا سرکشت رہوں. کیا اس کے لیے وہ نکلی ایسا کرتے تھے کیا؟ لیکن جب ان کا پریم تو جب معلوم پڑتا تھا کہ کبھی ہماری ماں کسی بات پہ ناراض ہو کے ہم کو ایک آدھ چانٹا مار دے اور ہم رونے لگ جائیں, تو ماں کو ان کی کتنی سننی پڑتی تھی, وہ کتنا ناراض ہوتے تھے, خیال میں آئے نا. تب ان سے معلوم پڑتا تھا کہ ان کے ہرد ہمارے پرتی ان کے ہرد میں کتنا پریم, کیوں ان کا راگ کا کوئی دوسرا ٹھکانا ہی نہیں تھا. ہم ہی لوگ تو تھے ان کے سروس, ہم ہی لوگ تو تھے, خیال میں آئے نا. لیکن ان کو کچھ نہیں, لیکن وہ برابر ایسا تھا. تو تم کو کیا پتا چلے, تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ بالک مانے اجانی, یہ جگت کے اجانی, اس کی کس پرنتی کس کے کارن کیا ہے اس کی وجہ سے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہو, ہے نا. اب ان ہمارے داؤ جی کا ایک گن ہم میں بھی آیا ہے. کیا ہم میں سے رہتے ہیں بالکل, ودیارتھی ہم سے بہت ڈرتے ہیں, نہ کائے سے ڈرتے ہیں, ہم نے تو کسی کا کوئی راج تک کیا ہی نہیں. کیا لیکن سب کہتے بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. تو ہم کہتے ایسا کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں بھیا یدی ایسا نہیں رکھیں تو ہم انہیں بندروں کے بیچ میں شانتی سے کیسے رہیں. آخر یہی تو وہی تو ہیں, وہی تو عمر ہے ان کی, جو یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکے پڑھتے ہیں اور جتنے ادم ہوتے وہی اسی عمر کے تو یہ لڑکے ہیں. کیوں کیوں اب ان کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے؟ راجندر تم کیسے شانتی سے رہ سکتے ہیں, اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں, ان کی ایک ایک بات میں انوالو ہوں کیوں, اور ان کو آ بیٹا کرنے لگ جائیں ہیں؟ تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اپنا شانتی سے نراپت طریقے سے پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں, لکھتے رہیں, اپنا کام کریں. آپ سمجھے نا, اس کے لیے سب جانتے ہیں, کیونکہ ہم کو اس کی وجہ سے کوئی کسی ودیارتھی کا کہ کسی آفس کرمچاری کا ایسا نہیں ملا کہ بھائی جس کی وجہ سے ان کا اپریم ہمیں کہیں دیکھنے میں ملا ہو. ان کے ہمارے پرتی جو واتسل بھاو ہے اس میں کہیں ہمیں آج تک کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی, جبکہ ہم نے تو کچھ پردرشت کیا نہیں. اب اندر ہوئے کہ نہیں ہے آپ لوگ نرنے کرنا کہ وستو سوروپ نرنے کرے گا. تو ایسی بات ہے, جو ہو گیا نا ممتا دھرے دیکھو جان بند کرنی کرے پہ اداسین روپ ممتا نہ دھرے ایکتو بدھی نہیں کرتا ہے. ساتھیں نرجرا کا ہیتو ہے, اس لیے نرجرا کا کام ہے نا. وہی کرتوت کریا تو ویسی کی ویسی ہے, جو کریا کو کرتوت سب نے بولا, کرتوت سب میں بدنام ہے نا, تمہاری کرتوتیں ہم سب جانتے ہیں, جو اچھی بری سب ہے نا. وہ تو کرودھ مان مایا لوگ کو بھی کرتوت کہہ رہے, پاتم جی کے بشنوں کو بھی کرتوت کہہ رہے, اور دیا دان ان کو بھی کرتوت کہہ رہے ہیں. کریں کرتوت موڑ وہ ہے ایک ہی کرتو موڑ کرے پھر منگل روپ, اور اس میں منگل بنے ایکتو بدھی پوروک کرتا ہے, اور اندھا ہوا ممتا سو ایکتو بدھی کے کارن بند پھل پراپت کرتا ہے.